सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
तो 10 बजे की पोस्ट आती है ना, उसके अलावा उसके लिए कुछ आया और फिर एक पैसा आया तो गया, उस दाल आई या वो आया तो बनाया, तो इतना भी एक बारी बनाया जो खलास हो गई। तो बाबा अपने लिए नहीं रखने देता था, सब बच्चों का चक्कर लगाता, सब बच्चों ने खाया। और हम नर्स थी, हमारे पास चीनी होती नहीं थी, क्योंकि चीनी बहुत मिलती थी, रेशन बस थोड़ी थोड़ी मिलती थी। और उन दिनों में हम गेहूं भी नहीं खा सकते थे, गेहूं भी आधा रोटी एक रोटी खाना है, तो कहीं हमारे जो होते थे वो बाजरी जुअर नहीं खा सकते, बाजरी नहीं खा सकते थे। तो हम भारत की जो बहनें होती थी, तो हम लोगों ने सोच लिया तो हम जो एक रोटी हमको मिलती है वो उनसे हम आधा करेंगे, न भी खाएंगे, हम सिर्फ बाजरी की रोटी। कई समय हमको बाजरी की रोटी हजम नहीं होंगी, तो इसलिए हम क्या करते थे, उनको जिस हजम नहीं होती थी, जो समझते थे ये नहीं खाई जाती है, तो उनको हम वो देते थे, हम लोग बाजरे की रोटी खाते थे। और ऐसे भी होता था तो रोज चने चने, रोज पेठा ही पेठा, जो सस्ते में सस्ती चीज होती थी वही केवल, बस पेठा ही खाते थे, चने खाते, चने काले चने, अट्टा भी उसका, तो कई बोले सिर्फ बेसन बेसन। तो उसके बाबा कई प्रकार से उसका खाना बनवा करके वो खिलाता था। और घी हमारे पास होता ही नहीं था, घी कहाँ से लाए, तो घी भी नहीं होता था। तो बाबा कहता था कपड़े पर रोटियां, इतनी तभी तो मोटी मोटी रोटी बनती थी, तो अच्छी अच्छी गर्म रोटी बना करके ऐसे रख दो तो उसे नरम हो जाएंगे। तभी तो हम लोग काम भी बहुत करते थे, आज की रोटी उन दिनों की रोटी समझो तो मोटी भी होती थी जैसे मजदूरों को मिलती, परंतु वो रोटी और सब्जी ऐसी बनाते थे जिसमें रस्ता अच्छा हो बस। तभी तो कोई इतना जो आजकल आप लोगों को खाना मिलता है, हम लोगों को तो एक तो सब्जी वही, कभी दो सब्जी नहीं, कुछ नहीं। और कभी कभी थोड़ा गुड़ होता था, बाबा कहता था गुड़ की पत्त बना करके सुबह को कुछ को एक रोटी से वो पत्त से खा ले विक्रम, वो कभी कभी होता था। या और भी हम कैसे किसको पता चले भाई हमने चाय में क्या डाल के दिया, किसके सामने नहीं डाल के देते थे। तो हम नर्स जब थी तो हम क्या करती, गुड़ का शीशे बना के रखती थी, उसमें सैक्रीन डालती थी, पर मीठा पड़े तो लगे मीठा हुआ, पर उसको ये नहीं बोले सैक्रीन डाली है, थोड़ी सैक्रीन डाल के उसको मीठा डाल के उनको दलिया दो या चाय दो, ऐसे दे देते थे। परंतु हम जब नर्स, यहाँ भी नर्स थी ना, तो बाबा बहुत तरीका सिखाता था, पेशेंट खुश भी हो जावे उनको जो जरूरी चीज हो दो। कईयों को बाबा देखता था ये बहुत बेचारे कमजोर है, तो सिर्फ मैं समझती हूँ कराची से लेकर के आज दिन तक भी जब मैं देखती हूँ भंडारे में, बाबा कोई दिन नहीं हुआ होगा मक्खन गली में न निकला हुआ, कितने भी गरीब पात्र में मक्खन रोज जगह में निकला है। सुबह को बैठ करके हमारी आनंद भी होती थी कराची में, सुबह को 2:30 बजे उठ करके ताजा ताजा मक्खन निकालती थी। और आज भी मैं भंडारे में जाती हूँ, मैं देखती मुझे वो दिन याद आते हैं, बाबा हमेशा कहता था रोज ताजा मक्खन निकलना चाहिए, हमको बताता था इतना से, कोई इतना गर्म मांगे नहीं देते, इतना दिला। अच्छा कोई बच्चे को बहुत कमजोर है, एक गर्म रोटी बना करके मक्खन थोड़ा दे करके उसको खिला दो, एक एक संभाल भी अच्छी हो गए, आदत भी न करे। तो बेगरी पात होने के कारण हम लोगों की वृत्ति अनासक्त बनी, जो बाबा खिलाए वो खाने के लिए खुशी, भगवान के घर का खाते हैं ये बहुत विश्वास होता था। और कुछ भी ऐसे कभी ये ख्याल नहीं आता था इस खाने से ये होगा, कभी ये ख्याल नहीं है। रोज पता रखा हो पटाते, कभी ऐसे छोटी छोटी गोली होती थी पटाते की, जो हम दिल्ली में भी गए ना, एक आना किलो वाला पटाटा लेते थे, कभी 4 आना किलो वाला पटाटा नहीं लिया होगा, गोली पटाटा वो लेकर के थोड़ा छोटा छोटा उसका रसा डाल के रसा बना करके इतना करके खा लेते थे, परंतु उन दिनों में जो हम खाना योग युक्त होकर के खाते थे, बड़े प्यार से खाते थे और आपस में एक दूसरे को खिलाते थे बैठ के। और मुझे इसमें बेगरी पार्ट की याद है, मैं दिल्ली में गई थी, हम लोग बस न दाल न चावल न मसाला न घी, अट्टे का किसने खा रहता था और नमक होता था और कुछ नहीं, इंगटी जलाते थे, दीदी हम होते थे। तो हम रात को स्टूल दो चार थे वो जब चले जाते थे, उसके बाद हम रोटी ऐसे गरम गरम बना करके जरा सा नमक उस पर ऐसे लगा करके एक एक दो ग्राई खिला करके रात को खाना ये खाते सोते, न चाय न दूध। कितना समय नहीं देखा होगा शिवा पर दिल्ली में बेगर पार्क में, हम इतने योग युक्त थे, इतना आपस में प्यार। रात को जो गरम रोटी वो ऐसे सेक करके खाते थे। जयपुर में मैं गई बेगरी पार्क में, नीचे राख में पता रहा दो डाल के और चकला वेला नहीं था, तो ऐसे रोटी ऐसे उस पर लग आग पर सेक करके वो खाई होंगे। तो बेगरी पार्क में सिंपल रहना, योगी रहना किसको कहा जाता है वो हमको बेगरी पार्क में सिखाया। और खुश बहुत वो जो उस टाइम का खाना उस टाइम का योग वो आज दिन तक हमको चला रहा है। आज के खाना तो चलो खाते हैं सर, पर दो दिनों का जो हमारा प्यार से खाना हमने तो पक्का कर लिया था, सांस या तक भी आ जाए मैं लौकिक में नहीं कभी जाएंगी, मैं कभी दवाई नहीं करूंगी, बस बाबा जो करे उसमें सब कुछ समाया पड़ा है। तो बेगरी पार में हमको निश्चय बुद्धि क्या होता है, प्रीत बुद्धि क्या होता है वो बहुत अच्छा होता है। और कपड़ा वो भी हम इतना सिंपल इतना ये, और हमको दो साड़ी होती थी उससे रोज थैली लेकर के काम ही जाते थे, बैग नहीं बिस्तर कुछ नहीं, और कभी चादर भी हाथ में नहीं हो, तकिया भी न हो। हम ब्रजकोठी में गई हूँ, भरतपुर में गई हूँ, वहां आपको छत पर सोई पड़े हूँ, तो इत रखी वो और साड़ी से ढक करके सो गई। कभी ये ख्याल नहीं आता था तो हमको बिस्तर नहीं है, हमको ये नहीं है, तो ये लगता ही नहीं। बेगरी प्रिंस बनना था तो बेगरी पार्ट ना आवे तो प्रिंस प्रिंसेस कैसे बनेंगे। बाकी वही नाजुक बेगम है होकर के शुरू वाली जो नेचर जैसे लोग इसमें पले हुए थे वही अगर चलती आ रही थी तो कभी हम सत्य की बात से ही लेने के लायक नहीं थे। तो बेगरी पार्ट में सत्य की बात से क्या होती है वो लेने के लायक बनाया। और इसमें बहुत बहुत अच्छा हुआ है शिवा में कहां पर भी गए हैं बेगरी पार्ट ने इतना मजबूत बनाया है। और बाहर का कभी किसका नहीं खाना है, उनके कहां आंख नहीं डूबी है। अभी मैं विदेश में कहां पर भी जाऊंगी कहां मेरी आंख नहीं डूबेंगी, कभी नहीं समझेंगे मुझे इस पदार्थ की जरूरत है या कोई इससे कुछ की जरूरत नहीं है। तो ये बेगरी पार्ट है हमारे विश्वास बाबा में और संस्कारों में सिंपल सिद्धि त्याग और तपस्या क्या होती है वो अनुभव कर रहे हैं।
साल बीतते गए, दिन बीतते गए और बाबा से आपकी अटूट रिश्ता जुड़ चुका था और बेहद प्यार हो चुका था, इतना नजदीक आ चुके थे, कभी जुदाई महसूस नहीं किया था, परंतु फिर भी आपको यही नाश खाते थे एक दिन सेवा केंद्र पर कोई सेवा के लिए बाहर निकलना पड़ा। वो जो समय था जो आप ये बाबा के नजदीक से जाकर के सेवा केंद्र की या संभाल करने की जो समय थी उस घड़ी की कुछ अनुभव सुनाएंगे।
और ये क्या था तो कराची में बाबा कहता था तुमको राजाओं की सेवा करनी होगी, ये करना होगा। तो हम लोग कहते थे बाबा कहता है, अभी हम कभी अलग होने वाले है ही नहीं, बाबा से जुदा हम हो नहीं सकते, ये पक्का था। कुछ भी हो जाए सब संसार को छोड़ा, संसार का हम लोग विकारी लोगों का मुंह भी देखने वाले हम नहीं है, हम तो बाबा से अलग असर नहीं होंगे। फिर जब बेगरी पार्ट आया तो हम जब देखते थे तो अंदर से आता था इतना हमारे बुढ़ा बाबा इतनी हमारी संभाल की, अभी हमारा फर्ज क्या करता है, ये बहुत ख्याल आता था। तो हमारा फर्ज क्या है उसमें कहीं एक बार उसमें बिरसांता बहन थी, तो बिरसांता बहन सुनते थे तो हम समाचार हमको मिलता नहीं था, बाबा कभी हमको बताता कुछ नहीं था, लेकिन अंदर आवाज महसूस तो करते थे ना क्या क्या हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो फिर बिरसांता बहन एक बार बाबा के सामने आई तो आंखों से आंसू बहा के कहती है, क्योंकि उसके फादर ने पिछड़ा किया तो उसके पास तो पैसा बहुत, पर जानबूझ के हम लोगों को ऐसा उसने विचार ने पाठ बजाया। तो उसने कहा बाबा मेरे को कभी गिरवी रखो, मेरे को गिरवी रखो तो मुझे तो मैं उसका गिरवी रखना खर करना बाबा के नैन गिले हो गए। बच्चों का कितना बाप से प्यार है, बाबा हम क्या करें। समझे, तो बाबा सहन नहीं कर सकता था हम लोगों का जब प्यार से कोई ऐसे बोल बोल देते। तो मेरे को अंदर से एक बारी जो बताया ना, तो मुझे वो साक्षात्कार हुआ, मैं बाबा को देखकर के घूम रही हूँ, तो उससे मुझे खींच होती थी मुझे कुछ करना चाहिए कुछ करना चाहिए, परंतु शरीर भी ऐसा नहीं होता था जो मैं कहाँ जाऊँ ट्रेवलिंग करूँ। एक बार 4 बजे बाबा के रूम में गई तो बाबा हमको दृष्टि दे रहा था, तो देखते देखते तो कहा तो क्या चाहती हूँ। मैंने कहा इतने मीठे बाबा को लेकर के कैसे दुनिया को दिखा दूँ, ऐसा मेरा बाबा लोग कैसे देखे। तो कहा एक दिन आएगा बच्ची। फिर एक दिन रात को मौली चलाई तो तुम यहाँ बैठ के क्या कर रही हो, क्योंकि संशय बुद्धि बहुत होकर के चले गए थे। तो तुम बच्ची तुम जाएंगी ना तो कईयों को तुम्हारे निश्चय से तुम उनको ठीक करेंगी। तो सुबह को 4 बजा मैं बाबा के पास गई। मैंने कहा बाबा मैं आज जाती हूँ। बाबा जी कहाँ जाते हो? मैंने कहा जहाँ बाबा आप भेजे मैं जाती हूँ। तो कोई प्लान नहीं था कुछ ये था। तो मैंने कहा फिर मैं ईशु के पास, ईशु नहीं थी कुमार का दादी थी। मैंने कहा मुझे 5 रुपया दो। तो मैं बाबा ने कहा कहाँ जाएंगे? मैं कहा तो मेरे पास ड्रेस भी नहीं थी, मैं फ्रॉक पैजामे से 5 रुपया लेकर के मैं अहमदाबाद गई हूँ। अहमदाबाद गई हूँ तो फिर जैन मंदिर था, वहाँ थोड़ा भाषण किया तो उन लोगों ने पूछा तुमको कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे बॉम्बे जाना है। तो उन्होंने बॉम्बे की टिकट लेकर के दी। तो मुझे याद है दादर से वर्ली तक मैं लोके के माँ का घर था। तो पहले भाई बुलाने आया था, मैं नहीं गई थी, मैं कभी नहीं जाएंगी। बाबा निकाल जा तो वो दिन था वंडरफुल। ये एक स्टोरी है, लोकित फादर के वो मरने का वो दिन था। तो माँ ने कोई एक दो दिन पहले याद किया था, सब और बच्चों को देख अगर जान की होती तो आज की दुनिया। और बाबा ने फिर मेरे पत्र में लिखा, लिख करके दिया, 8 सितंबर में आने वाली मेरी जन्नत बेटी तेरे पास आ रही है। तो मैं पत्र देख करके मैं कहा 8 तो 108 का भी मेरे पास ख्याल में नहीं था, मैं माला में आने वाली हूँ। तो मेरे पत्र मेरे हाथ में है, मैं जाके लोगों माँ को दिया। अब वो उनकी खुशी अपरमा पार थी। तो आज के दिन तुम पहुंचे और मैं दादर से वादी तक पैदल गई हूँ। तो पैसा तो नहीं था मेरे पास, तो मैं गई थी। तो कुदरती पर कहा तो तुम क्या खाएगी? मैंने कहा मुझे तुम मैं भोजन बनाएंगी। मैंने भोजन बनाया, बना करके सबको खिलाया प्यार से। तो मुझे पता ही नहीं है तो मैं कोई बाप का मेरे दिन है। तो अभी बहन भाई थे तो उन लोगों को पता था मैं कैसे वहाँ पहुँचती हूँ। तो ये जन लौकिक का भी कैसे कल्याण होता है। तो मैं पहुंची फिर तो उन लोगों को खुशी थी। उसको तो ये था तो ये हमारे पास कैसे भी आई तो जरूर, और बच्चों को उसने मोहब्बत खींच लिया। मैं कोई मोहब्बत तो नहीं गई, सेवा गई। फिर मुझे कोई रोक नहीं सकती थी। 1.5 फुट की बालकनी होती थी, मैं वहाँ बैठ के योग करती थी। फिर वाली सी फेस पर जा करके वहाँ बैठती थी, झाल लेकर के जैसे कोई ज्योतिषी बैठते। तो वहाँ आकर के कोई मेरे से पूछते थे तो मैं सेवा उनकी करती थी। तो कुछ को टाइम देती थी, वाली सी फेस पर डाल देती थी। घर पर छोटा सा एक रूम था, परंतु कभी भी मैंने घी वहाँ उसके पास नहीं खाती। दूध का कप देती थी मैं नहीं लेती थी। मैंने कहा तुम्हारे मोह में तुम्हारा दूध नहीं पियेंगी। वो कहा घी क्यों नहीं खाते? मैंने कहा मेरे बाबा थोड़ी खाते हैं, ये घी में थोड़ी घी खाते। फिर उसका उसको बीज बोलने का बहुत ख्याल आता। कराची में तो उनके पास कोई कमी नहीं थी, परंतु पाकिस्तान के बाद उनके पास खुद तो सुबह 5 बजे उठ के पापड़ करती थी और कहा कि किसको दुनिया को नहीं दिखाती थी। उनसे जो पैसा छिपा के हमारे पर्स में डाल देती थी, मेरे को बता रही नहीं थी। तुमको जहाँ भी जाना हो जो कुछ करना हो, तो मैं बेंगलोर गई हूँ, मद्रास गई हूँ, लौकिक तो जहाँ से जो पैसा मिलता मैं यही भेज देती थी। लिफाफे में डाल चिट्ठी अलग से भेजती थी, उसमें कुछ न कुछ डाल के और मैं स्टैम्प डाल करके कुछ न कुछ डाल के भेजती रहती थी। ऐसे समझो सेवा का पाठ खुल गया। मैं दिल्ली गई हूँ, पंजाब गई हूँ। तो फिर तो से लेकर के जब बाबा के पास, बाबा कहता ही था तुम मस्त फकीर हो, रमता योगी हो। तो बाबा जो कहता था ना वो ड्रामान होता, जो बाबा टाइटल देता है या बाबा कराना है तो कराए। तो जब जब जो सेवा का पाठ रहा है उसमें मैं खुश रही।
दादी थी, ऐसे तो बाबा के चरित्र आपने काफी सुना है, परंतु अभी हम बाबा के अंतिम स्वरूप को जानना चाहते हैं, जब साकार में बाबा अंतिम दिनों में थे।
ये तो
उस समय जो बाबा का शरीर था, ये आपका
ये मैं बताती हूँ। तो कई बार मैं बहुत बारी मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता था 4 बजे बाबा के पास जाना, 11 रात को 11 बजे, गुड नाइट 10:30-11 बजे। तो देखती थी मैं बाबा यहाँ नहीं है, असल मुझे कई बार देखती बाबा वो प्राण भी है और न्यारा है, यहाँ है नहीं। जब बाबा के साथ नहीं जाओ तो इस बाबा का संपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। और बाबा ने एक दिन कहा भी था, मैंने कहा बाबा तो देख रही हूँ, बाबा क्या देख, बच्ची क्या देख रही हो, तुम समझती हो ये एक दिन ये और वो एमलगमेट हो जाएंगे, ये और वो बाबा ऐसा देख रहा है जैसे बाबा को देख रही हो, ये और वो एक दिन एमलगमेट हो जाएंगे। और दूसरा जब मुझे लास्ट में जब बाबा से मैं मिली हूँ झुपड़ी में, उसमें 3 बारी का मेरा अनुभव ये है, क्यों उसके बाद मैं बाबा से नहीं मिली हूँ, 68 है। तो मेरे पास मैं बाबा के पास आई थी, मैंने कहा बाबा मैं क्या सेवा कर, तो कहा तो सेवा क्या करेंगे बच्ची, मैं यहाँ तुमको सबको बुला के दे दूंगा, यहाँ मेरी सेवा करना। तो उन दिनों में दिन में 3 बजता था, बाबा कहते तुम क्लास क्लास कराने छोटे आती थी। फिर बाबा के पास गई हूँ तो बाबा, मैंने कहा बाबा जी बेटा, तो कहा तुम अभी योग युक्त नहीं रहती हो। मैंने कहा बच्ची जैसे बाबा को बहुत होना रहता है, तो मैंने देखा बाबा को इतनी जवाबदारी है, इतना ये है बाबा को, जैसे यह है नहीं, जैसे खुद गुम गुम रहता है ना, ऐसे हमारे लिए बाबा ये चाहता है। फिर उसमें बाबा एक शिक्षा प्रैक्टिकल दी, तो क्या हुआ दीदी बाबा के पास आई, दीदी बाबा के पास आई तो कोई एक बहन थी जिसका स्वभाव थोड़ा ऐसा था जिस कारण और तंग होते थे, तो बाबा ने कहा, तो दीदी ने कहा बाबा देखो क्या कर रही है भंडारण, बड़ा सबको तंग कर रही है। तो बाबा उस दीदी को कहता है, वो सीन मेरे को बहुत काम में आती है समय समय पर, उन जैसा स्थिति तेरी क्यों बनी है, वो अभी मेरी शिकल पर समझो आपकी भूल है, मैं आपका असर मेरे को क्यों हुआ, वो सीन मेरे को कभी नहीं भूलती है। बाबा ध्यान खींचवाया दूसरे के स्वभाव का, तुम तो वो नहीं होना, तो तब भी कभी हमको कोई बात का इफेक्ट न रहे, बाबा इतना अपने ऊपर ध्यान रखता है। दूसरी बार बाबा ने मुझे सिखाई, बाबा घड़ी घड़ी दिखाता अंतिम स्थिति कैसी आएंगी, बाबा ने कहा, तो मैंने कहा बाबा ये समाचार थोड़ा सुना रही थी, मैंने कहा ये तुमने लिखा था, मैंने कहा दोबारा बच्चे रिपीट नहीं कर, लिखा था ना। तो ऐसे हमने देखा, तो हमको कभी भी अंदर से बाबा मुझे अंतिम स्थिति ऐसी धारण करनी है, तो जो आज जैसे बाबा की मुरली सुनी तो बाबा का व्यक्त भाव से बहुत दूर, और बाबा टाइम अपना एक मिनट भी कभी बाबा को देखा ना नीचे नहीं, तो संपूर्णता जैसे बाबा खींच रहा है, संपूर्ण बाबा दिखाई पड़ रहा है। और नष्ट मुहा तो बाबा का किसी में भी, हम बच्चे अजब खाते थे, मैं कहती बाबा सामने इतना प्यार करते हो, जाते हो तो आप ऐसे भूलते थे हमको जानते ही नहीं हो, तो बाबा हमको प्यार भी करता है क्यों, सुनने की शक्ति देता है। बाकी न्यारा कैसा है समंदर से, वो जो समंदर से न्यारेपन की बाबा की हमने आंखों से देखा है, तो अंतिम स्थिति बाबा की न्यारेपन की हमने बहुत देखी। और उसके पहले हम ये समझती हूँ बाबा जो ट्रस्टी किसको कहा जाता है, सारी लाइफ के अंदर यज्ञ पिता होकर के एकदम ट्रस्टी होकर के जो पाठ बजाया, उसने अंतिम स्थिति का साक्षात्कार सर्व गुण और सब कलाएं बाबा में कैसे हैं, तो बाबा ने यहाँ साकार में दिखा करके वो अंतिम स्वरूप तक हमको अपना अनुभव हमारे आत्मा के अंदर रख दिया। और खास देखो ना बाबा अमृत वेला तो क्या अभी अमृत वेला 2 बजे 3 बजे जिस घंटे को बाबा विश्व की आत्मा को ये जो आपको दुखों पर रहम करो तो माँ बाप हमारे ये गीत बज रहा है इस पर कहते हैं देखो किसको याद कर रहे ये सब इस बाप को याद कर हम देखते थे इस बाबा में न सुशेर बाबा इस बाप को भी सारी दुनिया के लिए बहुत प्यार है तो वो क्या स्थिति का साक्षात कर कराने वाले हो गया
जब बाबा हुए उस समय आप कहाँ थे
मैं उस घड़ी कोना में थी क्योंकि वही मास था मैं यहाँ आने वाली थी हमें सब तैयारी हुई पड़ी थी रजनी जयंती यहाँ आने वाली थी परंतु बाबा ने मुझे टेलीग्राम दिया तुम नहीं आओ ट्रेन का लोड है तुम्हारे लिए अच्छे नहीं तो मैं नहीं आई थी परंतु जिस दिन बाबा व्यक्त होता है उस दिन शाम को मैं 7:30 बजे तक टेप सुन रही हूँ बाबा की 13 तारीख की मूल जनवरी की उसमें बाबा ने ये कहा था कोई कुछ काम करता है तो उलहना नहीं देना चाहिए उलहना देना बड़ा दुख देना है तो वो मैं मुरली सुन रही हूँ तो तारा चंद्र जी आया था श्रीरामपुर वाला संतोष का भाई वो हमारे पास अपने बहनों के साथ था आया था फिर मिलके जा रहा था तो मैंने उसको कहा तुम जाते हो सुबह को जाना कहा नहीं अब तो हमारे तो जाने का टाइम मैंने कहा नहीं तुम रह जाओ फिर इंदिरा पुण्य वाली हमारे साथ बैठी थी शाम का जैसे टेप पूरा करके हम बैठे थे मैंने टेप बंद कर दी हम याद में बैठ गए उसका क्यों मैंने कहा पता नहीं मुझे पता नहीं क्या ऐसे से हो रहा था तो बंद कर दिया इंदिरा को मैंने कहा अच्छा तुम घर जाती हो तुम वापस आना बच्चों को सुला के तो कहा तो क्यों तुम ठीक हो ना मैंने कहा ऐसी नहीं है तो घर आना वापस तो आई तो इंदिरा वापस आई 10 बजा था तभी मेरी तबीयत तो ऐसी नरम गरम तो थी फिर मैं खटिया पर बैठी हूँ तो 10:30-11 बजा होगा तो चील का फोन आया जब चील का फोन आया तो मैंने इंदिरा को कहा तुम उठाओ तो कहा दादी तुम उठाओ ना तो चील मैंने कहा मैं फोन नहीं उठाएंगे मुझे पता कुछ भी नहीं है तो चील का फोन इंदिरा ने उठाया तो इंदिरा ने को चील ने कहा जानकी को तो ना फोन तो मैं उठ तो कहा बाबा जब बाबा चील बोला ना तो क्या बोल रही हो तो बाबा देव क्या करते मैंने कहा सच कहती हो ये किसी ने दुश्मनी तो नहीं की है कोई फोन ऐसा था तो मेरे से फोन रख दिया फिर मैंने फोन उठाया तो शील सबको कलकत्ता में बोल रही है शील दिल्ली में बोल रही है और ऑपरेटर रो रही है ऑपरेटर कह रही है तो भाई तुम सबको ड्रामा कह रही हो तो आप लोगों का मैं अजब खाती हूँ आप ड्रामा हो गया शील ऐसे कहती थी फिर मैंने समझा ये सच्ची बात हुई है नहीं बस कुछ समय माने नहीं बुद्धि तो मैंने उठा के फोन किया दुशांता क्या किया उनको किया तो आधा ही बजे रात को गाड़ी जाती है वो लोग तो गए और मैंने समझा मैं सुबह को सब क्लास में आएंगे मैं भी चली जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा सुबह क्लास में आए सबको समाचार सुनाया फिर मैं निकल के आते ही मोटो बन
तो उस समय बहुत
पता नहीं क्या होगा बाबा तो मेरे क्या तो क्या था जिस घड़ी मैंने सुना पेट थोड़ा सा अंदर से आया ये क्या ड्रामा हो गया परंतु क्या था कुछ समय पहले बाबा की मुरलियाँ जो चल रही थी ना ऐसी थी जैसे बहुत वो मुरलियाँ बहुत ऐसी लगती है बाबा जैसे अपने उपरा में घर जाने की तैयारी में है उनको तो अंदर से आता ही था लेकिन ऐसा ये था ही नहीं तो हम बाबा से चला जाएंगे और मेरा तो बाबा में खास था ही जब पहले मेरा मैं मरने से करीब थी तो मैं कहती थी मैं कभी नहीं मरूंगी बाबा ने मुझे ट्रिप पर के भेजा था बच्ची कोई हर्जा नहीं है तुमको अच्छा शरीर मिलेगा अच्छा मैंने कहा मामा भी चली गई विश्व किशोर भी चला गया मैं नहीं जाएंगी बुद्धे बाबा को छोड़कर मैं नहीं जाएंगी मुझे सेवा करनी है बाबा तो जब बाबा व्यक्त हुआ मैंने कहा मैं देखे बेटी क्या करूंगी अभी मेरा पास क्या है तो ये थोड़ा अंदर से आया परंतु एक बात का जब हम कराची में थे तो उन दिनों में दीदी थी तो दीदी को चेंज करके डाली चंद्रमणि को बाबा ने रखा था कोई बंगले की ज्योति पर। तो सुधर ही मुझे थोड़ा सुख माया दीदी जैसा चंद्रमणि नहीं संभाल सके, बोला किसको नहीं, पर बाबा आया तो मेरे से बांस पकड़ के बगीचे में ले चला। आज चंद्रमणि को रखता हूँ, कल मतबरी को रखूंगा, परसों पुष्पी को रखूंगा। पुष्पी थी 8 बरस की, मतबरी थी 80 बरस की। तुम्हारा क्या जाता है? वो जिस गरीब बाबा अव्यक्त हुआ वो सीन सामने, तुम्हारा क्या जाता है? ईश्वरी कार्य है वो, सब सबके मेरे दिल को पक्का कर लिया। अभी हमारा क्या जाता है? जो देखना होगा देखेंगे, अभी जो तो भी ये पक्का ही था। बाबा अपने आप ये कार्य कराने वाला है, आज से अब तक सब बाबा कराएगा। इस पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मुरली ऐसी बाबा की हम कैसे सुनेंगे। हम छोटे हाल में आ नहीं सकती थी, क्यों छोटे हाल में 2 दिन अर्थी रखी थी, हम बैठे थे जनवरी का माह। और फिर मम्मा के होते तो बाबा ने अर्थी रखी है, बाबा ने सामने मुरली चलाई, और हम बाबा के यहाँ रखे, हम क्या करें? तो अंदर से समझो जैसे दुख भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने सब कुछ हमको दे नहीं सकते, परंतु शांत अंदर से ऐसे हो गए तो उसने अव्यक्त का बाबा का पाठ करा था, बाबा सब कुछ पता था। उसने मेरी दिल को फिर तब भी हुआ, मैं समझ 2-3 महीना तो रहा। फिर अव्यक्त बाबा ने एक बारी कहा था, मैंने अंदर सारा मेरा भी क्या पाठ होगा, तो बाबा ने कहा जो पालना मिली है वो देनी होगी। तब से लेकर के चलता है।
आपको दादी वैसे अव्यक्त बाबा के बात में उतना निश्चय था जैसे साकार बाबा के बात में?
ये एक मैं बताऊं, मेरी नेचर अनुसार संशय उठाने की आदत है ही नहीं, असुर नहीं है, कभी उठा ही नहीं है। जैसे बाबा अव्यक्त तो हुआ अभी उस दिन हम कर रहे थे, निश्चय इतना अंदर मजबूत है जो कभी ये ख्याल आने, वो बाबा जाने और देखा तो अगर बाबा आया और बाबा की भाषणा भी बाबा ने अच्छी तरह से, जो एक एक बात की बाबा ने, जो 69 की मुरलियां है, जो एक एक बात का कह रहा है, तो बाबा खुद जिम्मेवार है जो बाबा को कराना हो कभी उठा ही नहीं। ये तो भले इतनी साकारी भाषणा मिल गए, मिली हुई भरी हुई थी, हम कैसे समझेंगे, पर नहीं ख्याल ही नहीं चले।
बाबा के संग तो बहुत ही बातें सुनाई, अभी मामा के संग की कुछ ऐसी बातें हमको सुनना,
अभी बहुत करना है क्या?
तो मामा के संग की, मामा के संग बीते दिन जो आपने बिताए, मामा के संग क्या पाठ?
मामा को भी हम थोड़ा पहले से जानती थी, तो मामा थोड़ी नखरी लिखता तो मैं थोड़ी सादी थी, यानी सिंपल और बहुत रिलीजियस ख्यालों की। मामा से मेरा फ्रेंडशिप नहीं थी, जैसे दादी के साथ ही सखीपन का था थोड़ा, बड़ी दादी उम्र से छोटी थी, मामा भी शायद थोड़ा सा छोटी होगी उनसे, लेकिन मामा बहुत अच्छा समझो एक्टिव थी ना, हम लोगों के न्यारी थी। परंतु जब मामा को पहले मंजिली में देखा तो मैंने अंदर खाया, तो ये बाकी आई, ये कुमारी आई, तो हमारे ये बहुत अच्छी बात है। तो मामा को देख अनेक कुमारियों को, मामा को देख सबको अंदर से आया, इसके परिवर्तन से इसमें जो चेंज आई, तो वो मामा को मैंने वहां देखा था। फिर मैंने बताया जैसे ओमनाथ में मामा को देखा, वाइट उत्तराक में उत्तराक में देखा, ये देखा, और हमारे सब जो और मेरी लौकिक बहन और भी जो मेरे सब थी बहने, तो उसके भेंट में मामा चमकती दिखाई पड़ती थी। कुछ समय के बाद देखा, फिर जब मैं कराची भी आई, तो जब आई तो मेरे को पहले पहले किसने कहा तो तुम मामा को देखा, मामा से मिली? मैंने समझा शायद जसोदा जो बाबा की है ना उसके लिए है, मामा कह रहे हैं, मैंने समझे ही नहीं इसको मामा कह रहे हैं। तो मैंने चाहिए क्या, तो मैंने समझा, मैंने कहा मिलेंगी, तो मैंने जसोदा के लिए समझा था। फिर जब 1-2 दिन के पास समझ गई मम्मा, परंतु मम्मा में जो परिवर्तन देखा ना ऐसा 1-1.5 बरस के अंदर, तो मेरी बुद्धि में लगा बहुत, तो ये सब में से ये कैसे एक मम्मा ऐसे स्पेशल हो गई, तो मामा के नैन, मामा के चैन, मामा के बोल, मामा का और खास मामा तो सदा जिस पर्सनैलिटी में रूहानियत और ऐसे किसान जो लगता था ज्ञान जो मामा सुना भी रही है तो कितना बाबा का जो सुनाया हुआ है सुना नहीं रही है तो समाया हुआ सुना रही है मामा के चेहरे से लगता था। फिर मामा को जब मैंने कुंज में देखा था ऊपर में छत पर रहती निम्न शांता हुआ एक कमरे में रहती थी और मामा हाल में सोती थी। तो पापा मामा का रखा भी ऐसे था, मामा की खर्चा ऐसी जो मामा के वातावरण आजू बाजू बहुत अच्छा हो तो जब भी ऊपर मामा के पास जाओ तो पीछे आंगन था, मामा कुर्सी पर चांदनी में बैठी हुई है, कब मामा के पास जाओ तो ऊपर छत करो मामा बैठी है तो मामा को तपस्या करता हुआ देख बहुत हम सुंदर से प्रेरणा मिलती थी बहुत। एक बार कुंज भवन में हम थी तो मम्मा कुंज भवन में ऐसे बालकनी पर खड़ी है, यहाँ बालकनी होती थी और हम लोग नीचे खड़े हैं तो मम्मा मुरली चलाई रात को गुड नाइट करते 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 ऐसी मुरली चला रही थी, इतना अच्छा समझा रही थी। मेरे ख्याल में हम लोग कान जैसे ऊपर करते करते एक डेढ़ घंटा लग गया होगा, पीछे अपने कांध को हाथ लगाया जैसे दर्द करा पर तो हिले भी नहीं। और जब भी मम्मा मुरली चलाती थी बड़ी प्यारी लगती थी। और फिर मम्मा के साथ मम्मा मैं टोटल यज्ञ में पहले मैं बात बहुत कम करती थी, मेरा अच्छा लगता था जो बाबा सुनाता है मैं अंतर्मुखी होकर के अंदर ही अंदर उसको धारण करूँ। और मेरे को अभी मैं बात बहुत करती हूँ, उन दिनों में जितना हो सकता था किसके साथ थी मेरा संबंध मैं नहीं रखती थी। एक दीदी कभी कभी पुरानी प्रीत थी बचपन की दीदी मेरे पता नहीं अवस्था का ख्याल रखती थी। एक बार मैं शांत थी थोड़ा तो दीदी ने कहा तो शांत इसलिए थी जितना मुझे ऊंचा पोशाक करना चाहिए उतना मैं नहीं करती, बस ये ख्याल था। तो दीदी ने बाहर से पकड़ के कहा तो तुम इतना ख्याल क्यों करती हो, पोशाक करके आखिर तो सब हम ठीक हो ही जाएंगे ना। मेरा मन हल्का हो गया। फिर मम्मा को एक बार पता चला तो मम्मा ने मैंने ऐसे कहा मैं मम्मा से थोड़ा डरती हूँ तो मम्मा ने डरती कोई मुझे ऐसे कुछ किया नहीं है पर थोड़ा संकोच ऐसे मम्मा से मैं हरी हुई नहीं थी। तो टेनिस कोर्ट में मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने कोई मम्मा को नहीं कहा था ऐसे मनोहर को शायद कहा था, मनोहर ने जाकर तो मम्मा को सुनाया था। मम्मा ने हाथ पकड़ा कहा तो तुम मेरे डरती हो, मैंने कहा मैं डरती नहीं हूँ पर तू कभी बात नहीं करती हूँ तो कहा अच्छा मैं आज से तुम्हारे बात करेंगे। फिर मम्मा ने इतना मुझे एक मम्मा की मुझे अंदर से इतना अच्छी बात लगती थी, सदाई बात करती थी घर से बात करती थी इतना रिगार्ड मैं कहती थी हम तो मम्मा मुझे समझो बहुत प्यार से बहुत रिगार से बात करती थी। और एक बार मुझे ख्याल आया तो मैं देखती थी मम्मा के पास ऊपर चंद्रमय दादी, ये शांतामणि दादी, कुमारता दादी, ये संतान ज्ञान दीदी ब्रजय के ऊपर मम्मा से बैठ के बहुत ज्ञान की गहरी गहरी बातें करते थे। ब्रजय जब आती थी तो बहुत मम्मा से अच्छी बाबा के पास से जो सुनती सुनाती थी। तो मुझे एक ख्याल आया जरा सा तो इस ग्रुप में मैं कैसे बैठेंगी जरा सा, तो मैं ये देखती कोई संकल्प रखो। तो फिर मैं जब ऊपर से नर्स थी तो कोई काम के लिए जाती थी तो चली क्यों जाती बैठती क्यों नहीं हो, तो मम्मा बैठा और फिर वो जाना अच्छी लगती थी हमको ऐसे। और फिर मम्मा इतना मुझे लगता था जो मम्मा कहे ना मुझे रिकॉर्ड ऐसा रखना चाहिए जो मम्मा को मुझे कभी शिक्षा न देनी पड़े, मैं रॉन्ग मिस्टेक न करूं। तो मम्मा जो ये कहती थी ना एक बारी मिस्टेक करके दूसरा बारी न करना की तो ये मुझे गांठ बांध ली थी। दूसरा हमारे ऊपर से मम्मा कभी कभी 5 बजे सुबह को उतरती थी तभी हम लोग 4 बजे कोई उठते नहीं थे, हमारे बचपन से उठने आदत थी। तो मम्मा ने क्या किया ऊपर से उतरी धीरे 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 उतरी उतरते उतरते नीचे किचन तक चली तो सबको रूम से सब गए मम्मा नीचे उतरी है। तो जब मम्मा सब आकर के मम्मा के पास नीचे खड़े हो गए तो मम्मा ने मुस्कुराते बोला आप लोगों के मंदिर में घंटियां बजा रहे हैं आपके भगत और भगत देवताएं सोए पड़े हैं, आप सब देवता बनेंगे ना। तब से लेकर के सबको ध्यान रहा, तो सवेरे के समय में हमारे भगत हमारी पूजा कर रहे हैं और हम सोए हुए हैं। तो मामा ने ऐसा हम लोगों को ये कहा, तब से देवता हम लोगों ने जो प्रयत्न होता था उन दिनों में, मम्मा बाबा जो कहे हम लोग आपस में बैठ करके अभी उससे हमको क्या करना है। तो मीटिंग का शब्द अभी है लेकिन वो करना है। कपड़े के लिए हमको सिंपल कपड़ा पहनना है, बाबा ने कहा पहले तो बहुत रेशम रेशम कपड़े हेरे हुए थे, नहीं तुमको लच्छा पहनना है। तो मिल करके बस ये पहनेंगे ये करेंगे। खाना ऐसे मम्मा देखती थी, मम्मा कभी तेज रोटी खाती थी, कभी दूसरा आधा कभी नहीं लेती थी, खाना जो मिला वो पूरा कर देती थी। नमक ज्यादा है नहीं है कभी बोलती नहीं थी। तो ये जब देखते थे तो मम्मा खाने के समय कभी इधर उधर देखती भी नहीं थी, ऐसे मतलब बैठती थी, खाया उठ के चली गई। ऐसे मम्मा जो प्रैक्टिकली कई बातों की ऐसी धारणाएं होती थी और मम्मा का ध्यान होता था, मेरी योग युक्त स्थिति योग शब्द भी है मतलब बाबा से लिंक बहुत हो गए। तो एक बार हम कीर्तन पर गए थे, कीर्तन पर गए थे तो बाबा मूली चलाई कीर्तन पर, तो बहुत करके मम्मा की स्पेशल कार होती थी, मम्मा भी चली जाती थी, उस दिन मम्मा नहीं वहाँ थी। तो बाबा का हमेशा होता था किसी को न जगाओ न किसको बुलाओ, जो योगन होगा अभी पहुंचेंगे। कभी नींद से कभी बाबा नहीं जगाने देता था किसको, और किसको बुलाता नहीं तो आप ही पहुंचे तो अच्छी बात है। तो उन दिनों में तो बाबा ने तो कीर्तन पर ऐसे मुली चला रहा है तो हम लोगों ने बोला बाबा मम्मा नहीं मम्मा को बुलाए, योगन होती आप ही आती। तो हम लोग गए तो हमने कहा मम्मा बाबा ने मुली बहुत अच्छी चलाई, बाबा ने मम्मा को आपको याद किया। हम लोगों ने तो ये सब सीधा नहीं बोला, मम्मा इतनी लाल हो गई, इतनी लाल हो गई, वो हमको याद आता है कई बार। तो हमारी स्थिति ऐसी हो जब बाबा याद कर तुम सामने पहुंच जाओ, ये एक मम्मा ने हम लोगों को मम्मा से हम लोग सीखे हैं, जो कभी कुछ कहने की जरूरत न पड़े। तो कई बार हमको बाबा भी ऐसी ट्रेनिंग देता था, मम्मा मुझे थी जो समझो ख्याल मम्मा को आया है, मैं खुद प्यार रहूं मम्मा कहे और मैं कहूँ। तो ये जैसे मुझे अच्छा लगता था बाबा जो कह रहा है, मम्मा को शिक्षा दे रहा है, मम्मा के लिए कई बातें कह रहा है, मम्मा उसे नहीं जैसे कह रहा। ऐसा कभी बाबा के सामने मम्मा ने ऐसा नहीं किया होगा, ये बात कैसे सिद्ध कभी नहीं कभी रिकॉर्ड है। और फिर मम्मा पुणे में मेरे पास तीन वाली मम्मा आई थी, मैं तो अंग संग मम्मा के संग रहे थे बहुत सारी। तो एक बारी हमारे जैसे कोई बहनों ने कोई पॉइंट स्पष्ट कराने के लिए मम्मा से पूछा, तो मम्मा अपना विचार दे रही हूँ इस पर मेरा ये। मम्मा ने कहा अब तुम समझते हो जो बाबा कह रहा है, मैं कहूंगी मेरा इस पर ये विचार है, तुम समझते हो कह सकती जो बाबा ने कहा। तो उन दिनों में बाबा कहता था जहाँ जीत वहां जन्म, फिर बाबा ने बंद कर दिया था ये कहना। तो हमने कहा बाबा मामा आपका क्या विचार है आखिर वो, तो मम्मा ने कुछ तो मम्मा ने ऐसा हमको फुल स्टॉप करा दिया जैसे अपने बुद्धि का मैं अपमान दिखाऊं ना, हम लोग दिखाएंगे भाई हमारा बुद्धि ये कभी बाबा ने ये कहा, पहले तो बाबा ने ये कहा था ना, उस दिन से हम कभी नहीं भूलेंगे, ये प्रैक्टिकल सिखाएंगे। और दूसरा मैंने मम्मा से कराची में पूछा था, ऐसे मम्मा ऑफिस में बैठी थी, मैं आगे जगह बैठी, मैंने कहा मम्मा मैं क्या पुरुषार्थ करूं, कहा सदियो समझो मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन आज का दिन मम्मा का सुनाया हुआ मंत्र भूलता नहीं है, सदा समझो मेरी अंतिम घड़ी है, मुझे बाबा की याद रहे। पूना में एक बारी मैंने कहा था मम्मा आप याद में कैसे रहते हो बाबा के, तो मम्मा ने कहा बुद्धि को मैं ब्लैंक कर देती। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे आपको हो जाती है, क्या बड़ी बात है, जो बाबा को उस पर लिखना होगा ब्लैंक होगा तो बाबा लिखेगा ना। ये है मेरी याद। फिर मैंने फिर पूछा मामा बस आपका माइंड कैसे तो क्या करते हैं। मैं उनको कह देती हूँ तो शांत रहो, जब मुझे जरूरत होंगी तुम तो बोलेंगी तो शांत। छोटा बेबी है ना हमारा, ऐसे मम्मा से जब जब पूछती थी ऐसी ऐसी बातें मम्मा सुनाती थी जो हमारे मन में लगता था जो कह रही है ना हो सकता है। जब लक्ष्मी का चित्र बनाया था लक्ष्मी नारायण का चित्र तो मम्मा देखती थी लक्ष्मी नारायण का चित्र जब कोला बॉम्बे में बन रहा था तो देखती थी रोज। तब जिस मम्मा देख रही है लक्ष्मी नारायण के चित्र को उस गरी जैसे ये हम है वहां हम कैसे होंगे, तो आर्टिस्ट हैरान हो जाता था तो ये मम्मा कैसे ये बता रही है आंखें ऐसी कर कान में ऐसी कुंडल डाल हार ऐसा था फलाना ऐसा था। ये जो लक्ष्मी नारायण चित्र आप लोग देखते हैं कि मम्मा ने बाबा को काम दिया था 6 महीना बॉम्बे में मम्मा को जिस ये सीन देखने लायक होती थी मम्मा लक्ष्मी नारायण को कैसे कैसे देखती है। एकदम मम्मा वैकुंठ में आया है मम्मा के सामने वो दिखाई पड़ रहा है। ऐसे मम्मा का प्रैक्टिकली कई बातों में स्वरूप से दिखाई पड़ता था। जब हम ये देखते थे बाबा मम्मा को देख रहे हैं मम्मा बाबा से दृष्टि ले रहे हैं एक घंटा बैठे हैं तो हम पूछते मम्मा कहाँ थे। मम्मा मुस्कुराती थी मम्मा आप शक्ति में चले गए थे कहा शक्ति में कहाँ कैसे जाएंगे अब कहाँ थे। तो ऐसे जैसे वतन में सूखे वतन में दोनों बैठे हैं साथ और हम लोग साक्षी होकर के देख रहे हैं मम्मा बाबा ऐसे बैठे हैं इतना प्रवाह तेज इतना हम भी जैसे मम्मा बाबा के साथ सुखी में बैठे और सुख मम्मा से हमको संपूर्ण रूप का बहुत अनुभव होता था। एक बार मैं एक बजे कोठी में बहुत बीमार थी तो मेरे को बाबा ने भी टेस्ट भी बहुत सारी ली थी तो देखे तो उसको कुछ संख्या तो नहीं आता है कुछ भी। कई बार बाबा मुझे पूछता नहीं था तुम कैसी हो और पेशेंट ने एक ही रूम में औरों को पूछेगा प्यार भी करेगा मेरे घर के पास करके चला जाएगा। ताक बाबा पता था तो ये दवाई दवा भी लेती नहीं है पर फिर भी एक बारी विश्व किशोर को कहा विश्व किशोर हमारे पास जो रूम में सोता था तो मेरे खांसी का वो आवाज इसको नींद नहीं आती है बाबा को जैसे कहा बाबा इसको एक इंजेक्शन लगाए तो नींद कर लेंगे परंतु मानती नहीं है। तो बाबा ने कहा अच्छा तो बाबा वहाँ है बिल्कुल मैं वहाँ थी क्यों मैं समय मेरी खांसी के कारण किसको डिस्टर्ब न हो गए तो मैं मैनेजर क्वार्टर में सोती थी। बाबा ने वहां से जो मुझे करंट दी ना मुझे फीलिंग आई विश्व किशोर वहीं बैठा है बाबा को ये कह रहा है इसको एक इंजेक्शन लगाए तो जो बाबा ऐसी करंट हुई जो मैं कितने दिन से नींद लगी मुझे ऐसे ऐसे करके नींद आने लगी नहीं मैं सो गई। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची सोइए पीछे पीछे आया मेरे रूम में शायद उठ के फिर देख के मैं सोई पड़ी थी। तो मम्मा को बाबा ने बुलाया मम्मा बच्ची को भी पूछने जाती हो तो मामा ने कहा नहीं। तो बाबा ने मामा को मेरे पास भेजा मामा को भेजा तो मेरे मामा आते मुझे जिस पर छाया है कोई मेरे सामने है तो मुझे आंख खुली। मामा ने कहा जनक जी मम्मा मम्मा ने मेरे खटिया मुझे गोद में सुला लिया गोद में सुला करके मैंने ऐसे मैं संपूर्ण मम्मा के गोद में सुला लिया। तो जैसे जैसे हमारे ये दृश्य हो गए ना मम्मा ने उस गरी कमल सुंदरी को बुलाया जाओ बाबा से वतन से पूछो तो उसको क्या देने। तो कमल सुंदरी उस गरी कुछ न कुछ बनाया जिस कारा बनाया वो मम्मा ने मुझे जिस छोटी के बेबी को स्पून से ऐसे पिलाया पिला करके फिर मुझे मम्मा सुला के गए। तो फिर उसके बाद बताया कि दूसरे दिन बाबा आया लाल किला के लाए ऐसे मम्मा बाबा ने मम्मा के जैसे मम्मा पर ऐसे समझो जाम ऐसे नहीं बस शो करे नहीं असर नहीं बाबा कहेंगे ना जाओ मम्मी मम्मा तो मम्मा का ये दिखाता आवाज बहुत कम सेवा इतनी की हुई होगी तो मम्मा ने ये नहीं कहा होगा मैंने कोई सेवा की तो वर्णन किया होगा। मम्मा बेंगलोर से आई थी पूना बेंगलोर आ रहे थे रो रहे थे जो डेड मास्टर रही थी मैंने आई तो जो मामा को लेने गया था भाई वो आया, तो वो ही बहुत सुना करके रो रहा था। तो कैसे बैंगलोर वाले रो रहे थे मामा को देख। हम लोगों ने बोला मम्मा वहाँ क्या था? अच्छा ही हुआ, कुछ वर्णन करे ना। मैंने कहा यहाँ से आप बॉम्बे जाएंगे फिर यहाँ से भी कहेंगे तो अच्छा ही हुआ। सर कोई अपने सेवा का अपने पाठ का कोई जरा भी मम्मा में हम लोगों ने कोई जैसा त्याग की मूर्ति वैसे तपस्या की मूर्ति वैसे माँ किसको कहा जाता है। तो मैंने मम्मा को राधे के रूप में देखा, सरस्वती के रूप में भी देखा, काली रूप में भी देखा, जगत अम्बा के रूप में भी देखा।
तो बाबा किस प्रकार से समझाने देते थे और मम्मा किस प्रकार समझाने देते थे या क्या युक्ति रखते?
बाबा कभी तो बाबा के समझाने देने का जो है ना बस बहुत करके स्वभाव है। और कभी तो ऐसा बाबा पाठ बजाता था हम लोग सामने नहीं कहता था, हम चले जाएंगे फिर पत्र लिखेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे फिर पत्र ऐसा लिखेंगे जो क्योंकि बाबा सामने यहाँ सामने क्यों नहीं कहा, नहीं सामने नहीं कहेंगे लिखेंगे पीछे। और बाबा हमें बहुत करके या तो सभा में कह देता था जो भी बात होती थी। और मम्मा को जो था ना मम्मा का समझाने का तरीका बहुत करके ऐसे कानों में कह देंगे इशारा कर देंगे तुम ये नहीं करो। और बड़े प्यार से मम्मा का एक बात बहुत थी जो हम लोगों और मम्मा के अंदर मम्मा के दिल भर में भरा हुआ हो उससे बोले या किसके कहने पर बोले या ऐसे बात एक पर दूसरी तीसरी तरह जितनी बात जैसी होती थी उतनी मम्मा टाइम दे करके प्यार से बुला करके साथ बिठा करके ऐसे मम्मा कहती थी। जिस कारण मम्मा से ऐसा नहीं लगता था मम्मा हम कभी नहीं कह सकते मम्मा आपने ये क्यों कहा किसके कहने से कहा। कभी हम लोगों ने मैं तो नहीं कहूंगी मैंने तो मामा को ये कहा होगा या महसूस भी किया होगा किसके कहने से मामा ने उनको कहा है। नहीं लगता ही था जो मामा मुझे कह रही है फिर भी हमारे अंदर मामा मेरी भले के लिए कह रही है हर हमेशा से समझा मामा भले के लिए कह ठीक कह रही है तो बुद्धि मानती थी। और बाबा की भी हम जो बाबा पर जो इतना होता था बाबा की जो सिक्ख्या बाबा की जो सावधानी सुनने की ताकत चाहिए इसलिए बाबा कई बार मामा के जरिए हम बच्चों के जो कार्य यज्ञ में गौर करके मामा ने हम बच्चों को जो पाला ना बाबा की शिक्षा में बहुत हिम्मत चाहिए कभी भी जरा भी ऐसा ना हो। तो कभी किसको ख्याल आता था कभी एक बार किसने कहा था बाबा तो ऐसा था मामा ने बुला करके बैठाएगा कही क्या था। तो मम्मा ऐसी देखती थी जो हम बाबा को साधारण समझ करके कुछ हम ऐसे शब्द बोलते हैं हसी मजाक में या कुछ मम्मा इस बात की बहुत संभाल करके हम उसको सभ्यता से खाती थी। कभी मुझे याद है एक बार मम्मा ने बैठ करके जैसे कि बहुत प्यार समझाया बाबा को साधारण जान बड़ी भूले नहीं कहा हमको इतने वो लगता था कभी हम मामा को जितनी बाबा के साथ बोलने का तरीका मामा का कितना एकदम प्यार का है पहचान वाला है किससे बात कर रहे ऐसे मामा ने ये बैठ के हमारे को ट्रेनिंग दी किससे बात कर रहे बाबा क्या कह रहा है वो ध्यान से उसमें हमारी बचपन जवानी होनी चाहिए कहा बचपन का संस्कार हो कहा जवानी में कभी मामा ऐसे हम लोगों को कंट्रोल करके रखा था जो हम ऐसे कभी ऐसा न करें जो कुछ हमारी गलती हो करके। तो मम्मा ने कई बार हम लोगों को अंतर संभाल संभाल करके अच्छी तरह से बैठ करके लाइफ बना सकती बाबा के आगे लाने के लिए।
मम्मा की आयु बहुत कम थी और उनकी वेट में भी कम थी और कुछ और भी कन्याएं थे जो मम्मा के बराबरी के थे और थोड़ी कन्याएं भी बहुत माताएं भी थे परंतु मामा के अंदर ऐसी क्या थी जो और भी मामा बन सकते थे दूसरे भी दादियां थी जो मामा बन सकते जिसको बाबा मामा बना सकता था या आगे रख सकता था तो मामा के अंदर ऐसी कौन सी दिक्कत थी कौन सी बात थी जो आपने अनुभव किया कि मामा को इसे मामा बनाया।
मैं एक तो कहेंगे मामा में सदा जब से मैंने मामा को देखा है, आज भी मामा के स्वरूप को सामने रखे, जितने भी दिव्य गुण है, तो लक्ष्मण लक्ष्मी कहा जाता है लक्ष्मण की मूर्ति, मामा और लक्ष्मण की मूर्ति कैसी रहे वो मामा का खुद लक्ष्मण पर ध्यान रहा है। साथ साथ एक बार हमने विचार किया था इस पर, जैसे कि रूहानियत के लिए अलग मामा को देर से न्यारे होकर के ये ध्यान बहुत रहा है, और बाबा के लिए भी जैसे बहुत रिगार्ड, वो भी मामा के नैन चैन से मामा से दिखाई पड़ रहा है, और त्याग में मामा ऐसा जो मामा की कहां आंख नहीं डूबी होंगी, कहां फिर से नहीं आगे लोगों ने, तो पर्सनलिटी में जो रूहानियत और रॉयल्टी, त्याग और सेवा भी, ऐसी सेवा शब्द अभी है ना, मतलब अपनी फर्जदाई, इतने छोटी एज में इतना परिवर्तन हो, जैसे मैं अपनी फर्ज, मेरा फर्ज क्या कहते हैं, तो हम सेवा कहेंगे तो मैं समझती हूँ एक साधारण शब्द है, फर्ज क्या कहता है, तो मामा जैसे अपना माँ अपनी का फर्ज, ऐसा पान बाबा की बेटी होकर के रही है, हम सबकी मामा होकर के रही है, और भाषा जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, जो समझो मम्मा के बाप दादा के बराबर, वो भी उनको मम्मा कैसे समझेंगे, क्योंकि मम्मा के मुख से जो वचन निकलता था, जो राय निकलती थी, वो एक मम्मा ने कभी किसको आदर नहीं किया होगा, कभी भी आदर नहीं किया होगा, पर जो मम्मा के आगे कुदरती जो है करना, तो ये सभ्यता सिखाने के लिए, जैसे माँ का काम ही है बच्चों को गुण सिखाना, बच्चों को सभ्यता सिखाना, तो मम्मा ने जो ये प्रैक्टिकली एक तो ड्यूटी अपनी पूरी बजाई है माँ बनेगी, उसमें मम्मा से कभी हमने बचपन गाने देखी नहीं, जल्दी मम्मा बन गई, माँ बन गई, दूसरा मम्मा त्याग और अपने तपस्या, मम्मा को कभी, आज भी हम जब तपस्या वर्ष की बात कर रहे हैं, मैंने मम्मा बाबा को कभी तपस्या न करता हुआ दिखाई नहीं है, दिखा नहीं है, जब मामा जब शरीर त्याग करती है उसके थोड़ा दिन पहले, जब मैं बॉम्बे में थी पूना से मामा गई थी, जब बॉम्बे से गई थी पूना, तो मैंने जब समाचार सुना था तो मामा की तबीयत थोड़ी और खराब हुई है, तो मेरे मन में आया मैं मामा को देख नहीं सकेंगी, मेरे को तो कैसे देखूंगी, तो जब मैं रमेश के घर में मामा के पास गई तो बैर के तबीयत को मजबूत करके अंदर गई, तो मेरा मन ढीला न हो जाए, तो फिर मैं अंदर गई तो मम्मा ने ऐसे मेरी दृष्टि दी, जनक मैं, मुझे मम्मा का शरीर दिखाई नहीं पड़ा, मुझे अपना शरीर दिखाई नहीं पड़ा, तो आज भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो शरीर को होते हुए शरीर कैसे स्थिति रहे, वो मम्मा के बहुत काल के अभ्यास का स्वरूप मैंने वो घर में देखा, तो ये जो शरीर का अभ्यास का शक्ति थी मम्मा के पास, जब मम्मा को कभी वाक करो ना, हाथ मम्मा हाथ हाथ में देकर के चले ना, तो भी हाथ को करंट आती थी अशरीरी होने की, मम्मा के सामने जाओ ना, बैठो ना बात करने के लिए, ज्यादा बात कर ना सको, मम्मा का रूप ही ऐसा, जो जरूरी बात है, जो मेरा मन हल्का करने के लिए जो बोला या कुछ मम्मा को कहना है कर लिया, और फिर मैंने मम्मा को ये देखा, दिल्ली में मामा थी, पुणे में मामा हमारे पास आई, बॉम्बे में मारा थी, रात को 11 बजा हुआ हो या सुबह को हो, मामा मुरली जरूर पढ़ती थी, कभी ऐसा नहीं देखा मामा मुरली न पढ़े, नोट्स पढ़ती थी, मुरली पढ़ती थी और टेप सुनती थी, तीनों मामा को हमने देखा हॉस्पिटल में, मामा थी, मामा रोज नोट सुनते थे, पढ़ती थी, पढ़ाई के साथ यहाँ भी रोज बाबा से मुरली छोटे में चलती थी, तभी माइक का रवाज तभी पड़ा है, मम्मा के रूम में मामा मुरली सुन रहे थे, मम्मा को सदा अलर्ट देखा है, कभी भी हम याद नहीं बैठते, कभी हमारे यहाँ के मम्मा कभी नहीं देखा होगा, मम्मा के नैन से नहीं है चमक रहे हैं, और स्वरूप में इस तरह से बाबा की स्मृति दिलाने में मम्मा के लिए बड़ी बात नहीं है, और निम्रता इतनी मम्मा में, जब बाबा कहता ना माता पिता बाप दादा का याद क्या गुड मॉर्निंग, मम्मा कभी भी माँ पर को नहीं समझती थी, कहते माता पिता, हम कहते हैं क्यों नहीं कहीं माता पिता, मम्मा कहते नहीं माता पिता, इस पर हम लोग बहुत पुणे में मम्मी से मामा बाबा ने कहा मात पिता, तो अस्कथित नहीं मात पिता, तो कभी ऐसे पन को दिखावे में माँ हूँ नहीं, जो कार्य में माँ है, बुजुर्ग पर में माँ है, परंतु मैं माँ हूँ। अम्मा से ऐसे रहते थे, मुझे ये आज दिन तक बड़ी मदद करती है ये बात है। पुणे में मम्मा मेरे पास थी, शुरू पर अम्मा की जो मामी तो उसकी थी, मैं मम्मा को चक्कर लगाने कार में लेके जाऊं, तो मेरे को कहती है दादी मैं जा रही हूँ, मेरे कान ऐसे मुझे मम्मा दादी क्यों कहे। मैंने कहा मम्मा मुस्कुराया, मैंने कहा सामने पूछ के जाना चाहिए। तो आज दिन तक मुझे ये याद आता है, मुझे ये अच्छी सभ्यता लगती है, जहाँ भी जाओ बता के जाओ मैं फलाने जगह जा रही, ये मम्मा ने सिखाया। तो मम्मा समझो रिस्पेक्ट से बात करके किसके दिलों को कैसे बाबा के साथ जोड़ने में, चाहे सभ्यता सिखाने में, मम्मा की हम बहुत सीखी है। अच्छा ओम शांति करते हो, बुला रहे हैं भाई, बुला रहे हैं
ओम मंदिर से। अभी बिहार ईश्वरीय विश्वविद्यालय बन चुका है, अभी इतने विस्तार यज्ञ के अंदर अनेक प्रकार के छोटी मोटी समस्याएं हम आप लोगों के सम्मुख आता ही है, परंतु ऐसी जो समस्याएं आती है उसको आप इतनी सहज रूप से समाधान स्वरूप देते हैं, उसके पीछे क्या रहा?
मैंने तभी आपको कहा मेरे सामने बाबा का फोटो रखो, क्यों मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ इसमें। एक तो अंदर समझ सकते हैं ईश्वरी ज्ञान यज्ञ में कोई न कोई आखिरी संप्रदाय वाले कभी न कभी किसी न किसी प्रकार का विघ्न डालते हैं जरूर। यहाँ बाबा के ब्राह्मण बच्चों के द्वारा भी कई प्रकार के ऐसे विघ्न आते हैं, लेकिन अंदर से समझते हैं नथिंग यू कर क्या सकते हैं, फिर भी बाबा ने साकार में अपने योग शक्ति से तपस्या के बल से जैसे हमारे संभाल के रखा है ये हमारा फर्ज कहता है, ये हम संभाल करें। दूसरा हम घबराए नहीं डरे नहीं, ये हमको पक्का है, हत्ती एक ही है, अगर कोई नीचे पर होते हैं जाएंगे कहाँ, वापस आएंगे जरूर। अगर कोई भी दिन डालते हैं तो हमको मन में कभी नहीं ख्याल आता है तो ये फलाम डिस्टर्विस करता है, डिस्टर्विस कर नहीं सकता है, जो करता है अपने ये करता है, हमारी कुछ नहीं कर सकता है। तो अंदर से हमारे निश्चय की दौलत चल अवस्था, भले कोई कुछ भी नीचे ऊपर करते हैं यज्ञ में समस्याएं के रूप बनते हैं, लेकिन समाधान होना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। अडोल अचल स्थिर बुद्धि हम बाबा के बच्चों की उन आत्माओं को आप ही शांत कर देती, जो हम उस घड़ी कई बार किसकी बात आएंगे ना हम अंदर से कहते हैं आप ही ठीक हो जाएगा क्या होगा, बुद्धि को हम चलाते नहीं है, तो इससे कई प्रकार की समस्याओं को या हमारे पास गुप्त ये भी है समझे, जिसके लिए मैं समझेंगी ये आत्मा विघ्न डालने वाली दिखाई पड़ती है, तो ऐसे भाग जाती फिर से मुंह भी नहीं दिखाती है। मेरे पास दो चार ऐसा मिसाल है, भगाती नहीं हूँ उसको पर भागी जाते, फालतू जो बैठ करके हमारे यहाँ विघ्न डाल करके तो अपने आप शांत कर फिर अगर पश्चाताप करके आए तो वेलकम है, शुभ भावना रखना हमारा काम है, पर विघ्न डाले और हम घबराए या हम भी कोई कारण न बने ये भी हमको बड़ा संभालना पड़ता है। इससे ये तो समस्याओं का हम कहते हैं नथिंग यू भी है, और ड्रामा में हर आत्माओं का पार्ट अपना है, कभी नीचे कभी ऊपर होता ही रहता है, क्या बोल सकते हैं।
यदि अभी वर्तमान जो समय अंतिम समय पहुंच चुका है और हरेक अपना संपन्नता के पुरुषार्थ पे लगा हुआ है, तो इन दिनों आप अपने पुरुषार्थ में कौन सी खास बात की जाना चाहिए?
मेरे को तो बताऊं सदन घर जाना ही याद है, दीदी का गीत जब बजता है दीदी ने जो गीत वो भी तो भूलता नहीं है, बाबा की सीन भी सामने आती है, कोई भी घड़ी अभी हम कभी ख्याल ही नहीं करते हूँ कल मुझे लंदन जाना है, कल कहीं कहेंगे जाना है, मुझे याद पता ही नहीं मुझे जाना है नहीं जाना है, आना है या जाना है, ये तो निमित्त पाठ होता है, बाकी घर जाने की सदा तैयारी है। उस दिन जैसे सुनाया था तो अवगुण मेरे में कोई न रहे, सर्वगुण रहे, खामी कोई जो छिपी हुई हो वो कोई हमारे पास न हो, ऐसी संपूर्णता की भी कोई कमी अक्सर हमारे पास नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान पर रहता है। और सेवा में हमारे लिए कोई हद न हो, जो बाबा कराए वो हम करने के लिए तैयार बैठे हो, या जब तक आत्मा कर्म में है तो सेवा के लिए सदा जी हाँ है, जो कराएंगा अपने कल्याण समाया हुआ है, उसमें अपने माइंड को सदा हल्का रखना है, निंदा उस तक जो कुछ होता है उसमें अंदर से सम्मान स्थिति बनी रहे, कभी हलचल में न आओ, ये अपना ध्यान।
अभी ये आखिरी प्रश्न है जो कि आपके अनुभव अभी बचन से जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, ये तपस्या वर्ष के दौरान उन सभी के लिए आपने क्या मन में प्लान सोचा है, और दूसरी बात है ऐसी दो महावाक्य सुनाइए जो उन सबकी पुरुषार्थ में आगे बढ़ सके।
जैसे हम लोगों की मीटिंग में जब से लेकर के तपस्या वर्ष का शब्द दादी के मुख से और बाबा के प्रेरणा से ये काम सुनते आ रहे हैं, तो हमारे अंदर में आता है जो पहले हम करेंगे हमको देख और करेंगे, मुख्य बात हमारे बुद्धि में ये बहुत है, और जब हम करते रहेंगे तो दूसरे को देख करके करेंगे। ब्राह्मणों के ये हमारी असली कुदरती आज से रसम है, एक दो का कलम रखता है, कलम की बात, अगर जो लहर चलती है जगह में जिस प्रकार की लहर चलती है वो सब में लहर फैलती है। तो हम सबको आज भी कह रही थी, तो मेरा विचार ये है जो अवस्थाओं में हम नीचे ऊंचाई में चलते आ रहे हैं, अभी वो समझो हमारा पाठ पूरा हो गया, कभी तो वो पाठ पूरा होना चाहिए ना, अभी हम सब वानप्रस्थी हैं, तो वानप्रस्थ अवस्था का अनुभव करना चाहिए, अशरीरीपन का अनुभव करना चाहिए, अगर देह का त्याग करूँ तो कैसे करूँ, ये सब प्रैक्टिस करनी चाहिए। तीसरा, ड्रामा के पॉइंट पर इतना पक्के रहो जो से कनपास हुआ, जो बाबा ने आज कहा फिर से रिपीट मन में भी न हो, चिंतन भी न चले। पास्ट तो क्या, परंतु पास्ट बीती बातें तो याद नहीं, परंतु अभी जो सदपंथ पर खड़े हैं, अभी अभी घर जा रहे हैं, घर सामने दिखाई पड़ रहा है, शांति धाम भी दिखाई पड़ रहा है, सुख धाम भी दिखाई पड़ रहा है, दुख धाम तो खत्म हो गया, हमारे लिए खत्म हो ही पड़ा है, तो दुख भी कभी आ नहीं सकता है, दुख धाम दुख खत्म होने के पहले दुख भी नहीं आ सकता है, सदा अंदर शांति सुख प्रेम आनंद स्वरूप में आत्मा रहूं, तो हमारी तपस्या और सहज हमको ऐसे नहीं लगेगा तपस्या कर रही हूं, पर तपस्या का फल क्या है, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति संपन्न रहूं, ये मैं फल ऐसा बांटती रहूं, ये मेरा भावना है। तो हम करते रहे तो उसका बल सबको मिले, हर एक को खींचो, अभी से तपस्या के साल में हमको भी ऐसी तपस्वी मूर्त बन करके बाप को फॉलो करते करते समान बनने के लिए बाबा ने हमको जल्दी समान हो जाएं, जो बाप और हम बच्चों में अंतर है वो कैसे निकले, ताकि हमारी समानता की शक्ति विश्व सेवा में मदद करेंगी। तो तपस्या कोई सेवा को कम नहीं कर रही है, तो तपस्या सेवा में और बल भरने के लिए सारे विश्व को जो भी जरूरत है शांति सुख प्रेम आनंद फैलाने की, वो तपस्या सेवा करेंगे। थैंक यू।